ओम शांति। सभी ने बाबा को प्यार से खत लिखा है, भट्टी में पत्र लिखते हैं ना बाबा को, तो आप सब ने बाबा को प्यार से खत लिखा, पत्र लिखा। किसने किसने लिखा है यहाँ पर जरूर लिखना, सच्चे दिल से बाबा को पत्र लिखो। बाबा ने हम सबको इतनी श्रेष्ठ जीवन दी। आज मुझे टॉपिक दिया है योगी जीवन की मूलभूत धारणाएं। हम सब बाबा के योगी बच्चे हैं। जिस दिन कोर्स किया, ज्ञान मिला, पहले यही मंत्र मिल गया, पवित्र बनो, योगी बनो, यही वरदान कहो, मंत्र कहो। पहले दिन ही बहनों ने बताया कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मूल मंत्र है। जब हम योग अभ्यास करने लगे तो यही कहा गया, ये सहज योग है, इसमें कोई मेहनत नहीं है। लेकिन योग भट्टी या योग की क्लासेस हम सब करते और चलते चलते अनुभव करते हैं कि बाबा कहता है सहज योग है, लेकिन योग में बहुत मेहनत लगती है। इतने जल्दी मन बुद्धि एकाग्र हो जाए, बाबा से सब शक्तियों का अनुभव होने लगे, बैठें और देह से अलग न्यारी हो जाएं। कई तो यही कंप्लेन करते हैं, मेरा योग नहीं लगता। ज्ञान अच्छा लगता है, सेवाएं अच्छी लगती हैं, लेकिन योग में मेहनत है। उसका कारण कुछ जो हमारी मूलभूत धारणाएं हैं उसमें कुछ न कुछ कमी है। जिसने उन धारणाओं पर पूरा ध्यान दिया है उसको योग में कभी मेहनत नहीं लगती। और मूलभूत धारणाएं पहले दिन ही हमें चार बताई गई, योगी जीवन का पिल्लर, चार मूल धारणाएं। पहली धारणा, हम सबको ब्रह्मचर्य व्रत पर ध्यान खिंचवाया गया। भले कुमार कुमारियां हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, किसी भी संस्था में, किसी भी स्थान पर गृहस्थियों को ये नहीं कहा जाता है कि तुम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। लेकिन राजयोगी जीवन के लिए पहला व्रत यही बाबा ने पहले दिन ही सब बच्चों को दे दिया। और जिसने इस व्रत को दृढ़ता के साथ धारण किया मन वचन कर्म से, वो सहज योगी बन गया। क्योंकि ये बुद्धि योग है, इसने का दिल का संबंध का योग है। अगर कहीं भी दिल का संबंध किसी देहधारी से जुटा है, कोई हमने संबंधों का आपस में विस्तार किया है, तो बुद्धि भटकती है, बाबा के साथ जुटती नहीं। और ये एक ऐसा व्रत है जो अगर हम दृढ़ता से धारण कर लेते हैं तो देह सम इस राजयोगी जीवन का ये पिल्लर बताया। दूसरा, बाबा ने हम सबको शुद्ध अन्न पर ध्यान खिंचवाया। क्योंकि आज तक शाकाहारी तो भारत में वैष्णव हैं, वल्लभाचारी हैं, बहुत से लोग हैं जो शाकाहारी हैं, भोजन की परहेज कई लोग करते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के जो परहेज है भोजन की, मैं समझता हूँ कहीं भी ऐसी परहेज नहीं बताई जाती। जो आज शाकाहारी लोग हैं, एक दिन की बात सुनाता हूँ मैं, प्रैक्टिकल। ट्रेन में हम लोग सफर कर रहे थे, 7-8 लोग थे, बीके ही थे, नए, 1-2 साल से ज्ञान में चलने वाले कुछ डॉक्टर्स बैठे थे। तो हमारे पास भोजन था, सेंटर से हम लेके चलते हैं। तो जब भोजन निकाला तो हमने कहा, आप लोग क्या खाएंगे, कुछ है साथ में लाए हैं? तो कहते हैं, हम जैन फूड खाते हैं, जैन फूड ले लेंगे, ट्रेन में मिलता है। तो मैंने कहा, जैन फूड क्या होता है? हमने कहा, कोई स्पेशल फूड होगा जैन फूड? तो बोलने लगे, उसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ता है। तो मैंने कहा, क्या राजयोगी आत्माओं के लिए सिर्फ लहसुन प्याज के कारण ही भोजन की परहेज बताई गई है, या इसके पीछे कुछ और रहस्य है? क्योंकि इस बात पर अगर ध्यान नहीं है किसी का कि भोजन अगर बनाने वाले के विचार ठीक नहीं है, विचारों में कोई नेगेटिविटी है, स्वार्थ है, किसी भी प्रकार का चिंतन ठीक नहीं है। आज तो हम ये ध्यान खिंचवा रहे हैं कि ये फर्टिलाइजर वाला कीटनाशक, ये भी हमारे शरीर को और मन को दूषित करता है, इस पर भी ध्यान दो। चलो, वो तो सबको नहीं मिल सकता, योगी फूड जो योगियों के हाथ से पैदा किया गया हो, वो इतने बड़े परिवार को अभी तक तो खिलाना संभव नहीं है। लेकिन जो भी हमारे घर में अनाज आता है, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी हम खा रहे हैं, उसको बनाने वालों की विचारधाराएं कैसी हैं, किस भाव से, किस संबंध से, किस तरह से वो बनाते हैं? क्योंकि अगर उनके विचार अशुद्ध हैं, भटक रही है बुद्धि, कई बनाने वाले जब बना रहे हैं तो फोन पर बात करते हैं, इधर से उधर, कहाँ कहाँ संबंधों में, लौकिक में, जवाबदारियां, ये वो, भोजन बन रहा है, कई स्वच्छ नहीं है, स्नान पानी भी नहीं करते हैं और भोजन बना रहे हैं। तो ब्राह्मण जीवन में सहज योगी, हमारा ये जीवन सहज योगी जीवन बन जाए, उसके लिए हरेक को शुद्ध अन्न जो मन को चेंज करता है, उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। कभी कभी हम अपने इस घर में भी कहते हैं, कई ऐसी ऐसी माताएं, कई पूरे नियम पर चलती हैं या नहीं है, चलती हैं, उनकी धारणाएं कितनी हैं, सेवा में आ जाते हैं और आ जाते हैं तो उनसे ये नहीं पूछा जाता है कि आपकी पक्की धारणाएं हैं या नहीं है, बनाते हैं आकर के। अगर जरा भी उनके संकल्प ठीक नहीं है, शुद्ध नहीं है, विचारधाराएं पवित्र नहीं है, तो उनके बनाए हुए भोजन को खाने वालों का योग नहीं लगता, कहीं ना कहीं उनका मन भटकता है। भले बाबा के घर में भोजन का भोग लगता है, पहले बाबा को स्वीकार कराते हैं, उस पर बाबा की शक्तिशाली किरणें पड़ती हैं, उस भोजन को किरणें शुद्ध कर देती हैं, लेकिन फिर भी अगर सहज योगी जीवन का अनुभव यहां रह करके भी न हो, सेंटर पर रह के भी न हो, तो जरूर बनाने वालों को देखना चाहिए किस धारणा से, किस स्मृति में रह करके बनाते हैं। स्मृतियों का प्रभाव, उसके चिंतन का प्रभाव उस भोजन के अंदर जाता है। इसलिए जितना हो सके, बाबा कई बार कहते थे साकार में ब्रह्मा बाबा कि बच्चे अगर मुझे चांस मिले तो मैं अपने हाथ से बना के खाऊं, क्योंकि अपने विचार अपनी धारणाएं किसी के हाथ का खा रहे हैं तो उसको हम बहुत योग युक्त होकर के पहले बाबा को खिला के कुछ समय योग की दृष्टि दे करके शुद्ध बना करके फिर खाएं। तो भोजन की शुद्धता हमारे विचारों को शुद्ध करती है और योग का आधार शुद्ध श्रेष्ठ चिंतन श्रेष्ठ विचार ही है, क्योंकि योग में हम अपने विचारों का दमन नहीं करते, उनको शून्य की तरफ नहीं ले जाते। संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है, उस संकल्प शक्ति से हम बाबा का आवाहन करते हैं, बाबा के घर जाते हैं, मिलन मनाते हैं। ये हमारा वाहन है, आत्मा का वाहन है, इसको कहते हैं अंतर मन वाहन। जितना मन शुद्ध शक्तिशाली है, जितना श्रेष्ठ चिंतन श्रेष्ठ भोजन उसको देते हैं, उतना वो सहज योगी जीवन का अनुभव कराता है। एक भोजन है स्थूल में जो शरीर को आवश्यक है, दूसरा भोजन है जो बुद्धि को आत्मा को जरूरी है। अगर कोई भोजन बनाने वाला मुरली नहीं सुनता, अमृत वेला नहीं करता, पवित्र है, लेकिन हमारे जो ईश्वरीय नियम बने हुए हैं उन नियमों को पूर्ण रीति से पालन नहीं करता, तो क्या उसके बनाए हुए भोजन का प्रभाव मुझ आत्मा पर नहीं पड़ेगा? विचार करना आप सब। ये मूलभूत धारणा के ऊपर अगर हमारा ध्यान है तो जितनी शुद्धता विचारों में होती है और जितनी शुद्धता भोजन में होती है उतना ही बहुत सहज योगी जीवन का अनुभव होता है। तीसरी मूलभूत धारणा संग की है, कहते हैं संग तारे कुसंग डुबोए। शायद आप सबको मेरी क्लासेज ये मिली होंगी, जब मैं शुरू में मधुबन में आया तो हमारी दीदी जी दीदी मनमोहिनी मेरे को कहती हैं कि संघ की संभाल करना। अब ये जब शब्द मेरे कान में आए तो मैं तो मुझ गया कि जो खराब संघ है, जो हम स्कूल के कॉलेज के लड़कों के संग, उस संघ से तो हम छूट करके आ गए। वहां तो सबका सारा खराब ही संग है और यहां समर्पित भाई बहनों के बीच में भी यही हमें श्रीमत मिल रही है, शिक्षा मिल रही है कि संग की संभाल करना। तो मैं जब थोड़ा सा ऐसे बोला कुछ नहीं, लेकिन वाइब्रेशन से दीदी ने समझा कि समझ नहीं पाया होगा, तो कहती है यहां भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सफेद ड्रेस में नौकर हैं, जिनको अपनी उन्नति पर अपने ज्ञान योग पर ध्यान ही नहीं है, रह रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, लेकिन सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन अपनी उन्नति के प्रति अमृत वेला मुरली क्लास कुछ पर ध्यान नहीं, और जब फ्री होते हैं तो पर चिंतन पर दर्शन तेरी मेरे की बातों में टाइम गंवाते हैं। ऐसे भी हैं संगठन में, इस संघ से अपनी संभाल करना ठीक है, क्योंकि सब एक जैसे तो नहीं होते हैं, आते हैं रहते हैं आकर के सेवाएं करते करते उनको समर्पित होने का चांस मिल जाता है, समर्पित हो जाते हैं, समर्पित होने के बाद अलबेलापन आलस्य और एक दूसरे को देखना, बड़ों को देखना। अब बड़ों ने कितनी तपस्या की होगी, कितना योग किया होगा, आयु के कारण कोई नहीं अमृत वेले आते, अपने स्थान पर ही कर लेते, कोई मुरली क्लास में भी नहीं आते लेकिन मुरली मिस नहीं करते। अब हम उनकर उनको ही देखेंगे कि ये लोग भी नहीं करते हैं, हम भी नहीं करते तो क्या हुआ, उनकी स्थिति और हमारी स्थिति कितनी क्या है। लेकिन इस संगठन में आकर के भी, इस वातावरण में भी आकर के कई आत्माएं इन बातों में बहुत अलबेली हैं। और ऐसे अलबेले लोगों का अगर मान लो, कहना नहीं चाहिए, एक बात कहता हूं, मधुबन में आप सब सेवाधारी बन करके आते हैं, खास करके हमारा ये जो जोन बैठा है मीरा सोसाइटी का, बहुत सारे लोग यहाँ सेवा के लिए आते हैं। यहां से कई लोग तो सुधर के जाते हैं और कई लोग यहां से बिगड़ के जाते हैं, कहना चाहिए कि नहीं? कह रहा हूं मैं, क्योंकि अगर उनको अच्छे लोगों का संग मिल गया जिनको अपनी उन्नति का, पढ़ाई का, परिवार का, यज्ञ का कदर है, अगर उनके संग में आकर के सेवाएं करते हैं तो उनके अंदर बहुत एक उमंग उत्साह आता है, एक सेवा के प्रति भावना जागृत होती है। और अगर वो कोई ऐसे संग में लग गए जो जैसे काम उतराऊ रह रहा है, खा रहा है, पर चिंतन करता है, व्यर्थ चिंतन करता है, बड़ों के बारे में, मुरली के बारे में, यज्ञ के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, जिसको कुछ भी पता नहीं होता यज्ञ के बारे में, सब प्रकार की ऊंची भावनाएं बड़ी बहनें हमारी उनके अंदर बिठा के सेवा पर भेजती हैं, और यहां आकर के वो छोटी मोटी बातें इधर की उधर सुन के अपनी स्थिति को बिगाड़ लेता है, जो उसकी प्रगति होनी चाहिए उसकी बजाय। क्योंकि जहां संगठन होते हैं वहां कुछ तो ऐसी बातें भी होती हैं, कोई कोई ऐसे होते हैं, लेकिन अगर संग ठीक नहीं मिलेगा तो रंग लगेगा, संग का रंग तो लगता ही है। इसलिए बाबा ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, सत्संग करो। दुनिया में सत्संग नहीं है लेकिन हम सबको सत्संग करने का बड़ा अच्छा अवसर मिला है। सत कौन है? गॉड इज वन, और उसको कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा सत्य है। हम सब इस संघ में रहते हुए अपनी बुद्धि का संग एक बाबा के साथ रखें, उसका रंग लगता जाए। इसलिए बाबा कहते हैं तुम मुझे अपना साथी बना लो। सेवाएं मिल रही हैं, जिनके साथ भी मिल रही हैं करो, लेकिन उनके संग में नहीं आना। अपनी उन्नति, अपना कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपना चिंतन, अपनी पढ़ाई पर ध्यान। मान लो मुरली के समय ही कोई सेवाएं होती है, कई बार ऐसे होता है पार्टी आती है, सेवाएं बहुत होती हैं, मुरली क्लास में जाने का चांस नहीं मिलता सेवाधारियों को खास। लेकिन क्या मुरली के समय या बाद में मुरली हम ध्यान पूर्वक सुनते हैं? बाबा का संग माना, सिर्फ बाबा बुद्धि योग से याद रहे वो तो ठीक है, लेकिन बाबा की पढ़ाई का भी संग बुद्धि को मिलना चाहिए। अच्छा चिंतन बाबा की मुरली से मिलता है, रोज होमवर्क मिलता है, वरदान अच्छे स्लोगन सुनते हैं हम सब। कल की मुरली अगर आप सबके ध्यान पर आई होगी, अव्यक्त बाबा की इतनी वंडरफुल मुरली, मेरे को कितने फोन आए, कहां से निकाली? हमने कहा निकाली तो कायदे से ही है, लंदन से फोन आया एक भाई का कि भाई जी यही पुटसार तभी चाहिए जो आज बाबा ने कहा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, संगठन के लिए एकता, संगठन में संतुष्टता। जो बाबा की मुरली कल की थी, मैं समझता हूं सबने ध्यान दिया होगा। अब ऐसी मुरली का चिंतन, उसके विचारों में रमण करना, उसके संग में बुद्धि को रखना, यह भी एक सत्संग कहलाता है, सत्य विचारों का चिंतन। तो हम अपने आप में भी कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा संग है जिसका रंग लगता है। जो ऐसे व्यक्ति हैं जो यहां रह करके या कहीं भी आपके सेवा केंद्रों पर भी ऐसे होते हैं, सब एक जैसे पुरुषार्थी नहीं होते, कोई है जो गुणग्राही होते हैं, एक दूसरे की विशेषताओं को नोट करते हैं और कोई एक छोटी छोटी बातें, कमी कमजोरी संस्कार, ये ऐसे करते वो ऐसे करते, इतने पुराने हैं ये भी ऐसे करते हैं। और बाबा कहता बच्चे ये जवाबदारी तुम्हारी नहीं है, ये जवाबदारी मेरी है। अगर कोई इधर उधर कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, कोई संस्कार स्वभाव के अधीन है, तो बाबा उसको अपने आप सुधारेगा, ठीक करेगा। हम अपनी उन्नति के लिए सेंटर पर आए, अपनी उन्नति की बातें जो हम हमारे कल्याण की हैं उसके सिवाय और कहीं भी साइड सीन में न जाएं। अगर योगी जीवन बनाना है, योगी जीवन, हम लोग इतने समय से यहाँ रह रहे हैं, कई बातें जो शायद इस वायुमंडल में आप लोगों को सुनने को, नयों को मिल जाती हों, मुझे नहीं पता होती, बताता भी नहीं कोई। सेंटर से फोन आकर के कई बातें पता चलती हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा है। कहने का भाव मेरा ये है कि अगर हम अपनी मस्ती में रहते हैं, अपने आप को ज्ञान और योग में बिजी रखते हैं, अपनी सेवाओं में बिजी रखते हैं, बाकी कौन क्या कर रहा है, मुझे क्या करना। अगर सच्चा योगी जीवन बनानी है तो बाबा एक बात कहते हैं, साइट सीन देखना बंद कर दो। वैसे भी अगर कोई कोई स्पीड में जाना होता है तो वो इधर उधर नजारों को देख करके रुकता नहीं है, भटकता नहीं है, एकदम उसको याद रहता है मुझे इस समय यहां पहुंचना है, मंजिल सामने है, साधन है, पहुंच रहे हैं। कुछ भी नीचे ऊपर अगर दिखाई देता ये हुआ वो हुआ तो कहते छोड़ो इसको सब, हमको पहुंचना है, अभी ट्रेन का टाइम है, प्लेन का टाइम है, पहुंचना है। साइड सीन कितनी भी खराब इधर उधर की बातें आ जाएं, रुकते नहीं है। क्या हम सबके ध्यान पर रहता है कि मुझे पहुंचना है, संपन्न संपूर्ण बनना है, बाबा जैसा मुझे बनाना चाहता है, मुझे बन करके बाबा के समान बन करके बाबा के साथ जाना है। अगर किसी के ध्यान पर अटेंशन में लक्ष्य सामने है कि ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, ऐसे नहीं ब्राह्मण यहां से जंप लगा के देवता बन जाएंगे, ब्राह्मणों को देवता बनने के लिए उन्हें संपूर्ण फरिश्ता बनना होगा। फरिश्ता बनने का मेरा पुरुषार्थ क्या है, और फरिश्ता बनने के लिए कहीं भी दैहिक आकर्षण का रिश्ता जोड़ा हुआ तो नहीं है, उनके साथ संग तो नहीं है, बुद्धि का संग इस फर्श के साथ तो नहीं है, ये देह भी फर्श है ना। इसलिए बाबा कहते हैं अपने लक्ष्य को सामने रख करके बाबा के संग रहो, बाबा की पढ़ाई के संग रहो। अच्छे लोग अगर हैं, बहुत अच्छी उन्नति की पुरुषार्थ की बातें सुनाते हैं, सुनो। आजकल साइंस के साधनों ने उन्नति का भी बहुत अच्छा मार्ग बता दिया, दे दिया है सबको। और अगर साइंस के साधनों का सही प्रयोग नहीं होता है तो उससे क्या क्या लोग सीख जाते हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता है दुनिया का वो भी सीख लेते हैं। इसलिए इस पर भी बहुत ध्यान देना, ये भी संग बुद्धि का है। इसलिए मोबाइल रखो भले, यूज करो, लेकिन बाबा कहता है ये माया न बन जाए, ध्यान देना। कई लोगों को, बहनों को जब सेंटर्स पर जाती हैं तो बड़ी बहनें कहती तुम मोबाइल जमा कर दो, मोबाइल नहीं रखना है सारा दिन। रात को तो खास 8 बजे के सेंटर पर जमा करा देते हैं कि रात को बैठ के किसी से बात नहीं करें। कई लोग सोचती हैं कि इसमें तुमको अच्छी अच्छी क्लासेज मिल जाती हैं, मधुबन से डायरेक्ट मुरली मिल जाती है, हम अपने पास रखें। कई फोन आते हैं मेरे पास, कैसे ऐसे आप बड़ी बहन को समझाओ ना, हमारी उन्नति के लिए ये साधन है। लेकिन देखा यह जाता है कि कोई कोई होते हैं जिनको अपनी उन्नति का ही ध्यान रहता है, लेकिन अधिकतर माया ऐसी है, कई बार कहते हैं हम छोड़ देते हैं लेकिन वो हमें नहीं छोड़ती है। ये साधन अगर हम ज्यादा इसको प्रयोग में लाते हैं तो कभी भी बुद्धि योग परमात्मा से बाबा से टिकता नहीं, लगता नहीं है, भटक जाती है बुद्धि। इसलिए यूज भले करो। कईयों के पास मैंने देखा अभी तक भी वो स्क्रीन वाला ये यूट्यूब वाला मोबाइल नहीं रहता, अच्छी बात है, बात करनी है कर लिया, लेकिन अगर इसका इंटरेस्ट हो गया तो कितना समय व्यर्थ जा रहा है। ये भी बुद्धि का संग है। सबको अगर योगी जीवन बनानी है तो बहुत अंडरलाइन करना है कि मुझे कोई भी अपने इस रास्ते से भटक करके कोई चीज न देखनी है, न सुननी है, न बोलनी है। और चौथा जो बाबा रोज पढ़ा रहा है, देवी गुणों की धारणा, मुरली से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आज भी बाबा ने कहा बच्चे ताली दो हाथ से बजती है लेकिन आज मुख की ताली पर ध्यान खिंचवाया। अगर कोई एक जोर से बोलता है, गुस्सा करता है, तो कभी कभी बाबा कहते हैं अगर एक भूत एक में भूत आता है और आपने सामने से वो भूत के आगे खड़े हो गए तो आप में भी आ जाएगा, इसलिए चुप रहो, किनारा कर लो, हट जाओ। अगर ये सब जो मूल धारणाएं हैं, जो हमारे ज्ञान की मूल धारणाएं हैं, ये धारणाएं अगर हमारे प्रैक्टिकल जीवन में हैं, मैं समझता हूँ योगी जीवन बहुत इजी, बहुत सहज जीवन है। कोई भी मेहनत नहीं, मैंने तो आज तक कभी मेहनत नहीं की है योग लगाने की। हम बाबा के हैं, बाबा हमारा है, सब सेवाएं करते हुए बाबा के संग हैं, बाबा की याद में हैं, और बाबा वही कराता है जो करना है। इतना सहज योगी जीवन अगर सचमुच ये मूल बोध धारणाएं, तीन बातें और आपको बताता हूं, ये चार तो हमें बेसिक पहले दिन ही बताई गई थी और उनको हम जितनी दृढ़ता के साथ चारों नियमों को पालन करते हैं उतना सहज योगी जीवन का अनुभव करते हैं। लेकिन चलते चलते तीन बातें और इस ब्राह्मण परिवार में चाहिए जो हमारे योग को सहज कर दें। एक है आंतरिक खुशी। अगर खुशी गायब होती है, चलते चलते कोई बात हमारे मूड को बिगाड़ देती है, कई लोग मूडी होते हैं, छोटी छोटी बातों को इतना फील कर लेते हैं, खुशी गायब हो जाती है। इसने मेरे को ऐसे बोल दिया, इसने ऐसे कह दिया, ऐसे हो गया, सुन लिया, देख लिया, बोल दिया, या कोई ने मुझे कुछ कह दिया, डिस्टर्ब हो गए, खुशी गायब हो गई। सबसे पहले माया की नजर हमारी इसी खुशी के ऊपर रहती है, इसकी खुशी गायब कर दो। अगर खुशी नहीं है इस ब्राह्मण जीवन में, इतनी सब प्राप्तियां, इतना अच्छी जीवन, इतना अच्छा संग, इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा ब्रह्मा भोजन, सब कुछ मिल रहा हो, लेकिन आंतरिक खुशी न हो, छोटी छोटी बातें नोट करना, फील कर लेना, यहां मुझे पूछा नहीं गया, आज इसने मेरे से ठीक बात नहीं की, मुस्कुरा के तो बात कर लेते कम से कम, मैं इतनी सेवा करके आया, मैं इतनी सेवा करता हूं, बहनों को तो मेरा रिगार्ड ही नहीं है, पता ही नहीं चलता है। मान लो आपको सेंटर्स पर आप जाते हैं मुरली सुनने के लिए, क्लास करने के लिए, आपसे कोई ने हलो हाय नहीं किया। कोई कोई होते हैं इसकी इच्छा रखते हैं, अपेक्षाएं बहुत होती व्यक्ति की, और बहनें अपनी कार्यों में कई बातों में बिजी रहती हैं, नहीं ध्यान दिया, तो दो चार दिन तो आएगा लेकिन फिर बाद में कहेगा मेरे क्या कदर है, कोई देखता भी नहीं है, कोई बोलता नहीं, मुरली तो मैं अपने घर में भी पढ़ सकता हूं। सेंटर पर जाते हैं तो कम से कम बहनों को एक बार बात तो करनी चाहिए, पूछना तो चाहिए कैसे हो, क्या है, तो इस बात को बहुत जल्दी फील कर लेते हैं। और जो फीलिंग जो आज बाबा कहते हैं, दुख सुख निंदा स्तुति मान हानि जय पराजय, अगर योगी जीवन का अनुभव करना है तो इसमें समान बनना पड़ेगा, नहीं तो जीवन का अनुभव नहीं होगा। योग लगाओ भले एक घंटा दो घंटा लगा लो, कमेंट्री कर लो, फिर बाद में बाहर गए कोई बात हो गई, मूड खराब हुआ, फीलिंग आ गई, बाबा एक शब्द देते हैं घड़ी घड़ी के घड़ियाल। घड़ियाल जो होता है ना मगरमच्छ जैसे आंसू बहाता है, कुछ जानता ही नहीं है, पड़ा हुआ ऐसे ही, सामने आ जाएगा तो खा जाएगा। तो बच्चों की स्थिति भी ऐसे ही, जैसे कुछ जानते ही नहीं है, अभी अभी देखो बड़े खुश हैं, बड़े उमंग उत्साह में हैं, और अभी अभी एकदम सोडा वाटर नशा गुम। ऐसे क्या योगी जीवन का अनुभव होगा क्या? हम सबको बहुत एक रस स्थिति का आसन चाहिए। योगी के दो आसन हैं। अगर आसन के बिना योग किया जाए तो योगी नहीं है वो, और वो आसन कोई ये आसनी बैठने वाली नहीं है, वो है एक रस स्थिति का आसन। हर एक ध्यान देना कि मेरी स्थिति एक रस, कुछ भी हो, चाहे महिमा हो, चाहे ग्लानी हो, चाहे प्राप्ति हो, चाहे अप्राप्ति हो, चाहे कोई पूछे या न पूछे, अगर मैंने अपनी स्थिति अपने श्रेष्ठ चिंतन से बनाई हुई है, किसी के आधार पर हमारी स्थिति नहीं है। कईयों की स्थिति किसी के आधार पर है, कोई महिमा कर देता है तो फूल जाता है, और अगर कोई थोड़ी सी ग्लानी कर दिया तो डिस्टर्ब हो जाता है। हम सब इस बात को ध्यान दें, योगी जीवन का आसन है एक रस स्थिति, योगी जीवन का आसन है साक्षीपन की स्थिति, योगी जीवन का आसन है कमल फूल समान स्थिति। ये आसन छोड़ करके योग नहीं लगेगा। अगर हम कमल फूल समान, जैसे कमल का फूल है, कीचड़ में, पानी में, कैसे भी वातावरण में रहे, उसके ऊपर उसका छींटा नहीं लग सकता। हम सभी भी अपनी स्थिति अगर योगी जीवन बनाने के लक्ष्य से हम आए हैं तो कमल फूल के समान रखनी होगी। कितनी भी बड़ी परिवार है, सेवाएं हैं, जवाबदारियां हैं, प्रवृत्ति है, लेकिन हमारा आसन कमल आसन है, जितना न्यारे उतने प्यारे। अगर न्यारे और प्यारे का बैलेंस है, न्यारे ऐसे नहीं बनना जो कहें तो सन्यासी बन गया, प्यारे ऐसे नहीं बनना जो कहें तो गृहस्थी हो गया, तो फंस गया करके, बैलेंस है। जो न्यारे और प्यारे का बैलेंस रख करके हर बात में, हर परिस्थिति में अपनी स्थिति को एक रस रखता है, अपने और अन्य आत्माओं के पार्ट को साक्षी होकर के देखता है, वो अंदर ही अंदर बहुत प्रफुल्लित रहता, खुश रहता है, और खुशी इस योग का आधार है। बाबा कई बार कहते हैं अगर इस योगी जीवन में उड़ती कला का अनुभव करना है तो जैसे प्लेन को उड़ाते हैं तो उसको डबल रिफाइंड पेट्रोल की जरूरत होती है, ऐसे बुद्धि को बाबा तक ले जाने के लिए उड़ती कला माना इस साकार वतन से अव्यक्त वतन, मूल वतन की यात्रा करने के लिए बुद्धि को डबल रिफाइंड पेट्रोल चाहिए, और वो पेट्रोल है आंतरिक खुशी और नशा। ब्राह्मण जीवन का नशा देखो बाबा ने क्या से क्या बनाया है, क्या थे हम सब पास्ट जीवन में, और बाबा ने ऐसी श्रेष्ठ स्वच्छ पवित्र निर्मल जीवन दी। इस जीवन की वैल्यू है, जो इसका महत्व उसको समझो और उस नशे में रहो। अगर नशा है, खुशी है, बैठोगे एकदम बाबा अपने आप खींच लेगा, उड़ जाओगे यहां से, योग भी अच्छा लगेगा और सारा दिन चलते फिरते अपने भाग्य का सुमिरन होता रहेगा। तो एक है आंतरिक खुशी और दूसरा हल्कापन। हल्कापन किसी भी प्रकार की, भले कितनी भी जवाबदारी हमारे ऊपर है सबके ऊपर है, और समय अनुसार ये जवाबदारियां कम होने की बजाय मैं देख रहा हूं बढ़ रही हैं। एज भी बढ़ रही है, जवाबदारियां भी बढ़ रही हैं, और ये सब जवाबदारियां होते हुए भी हम इतना लाइट रहे, डबल लाइट स्थिति में, क्योंकि बाबा ये सब तेरी जवाबदारियां हैं, मुझे तो आपने निमित्त बनाया है। मैं हमेशा कहता हूं बाबा आपने संगम युग पर हम सबको कठपुतली बनाया है, डोर अपने हाथ में रखी है, नचा मुझे रहे हो। अगर ये स्थिति रहती है ना, करण करावनहार बाबा करा रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं? कभी ये अभिमान आता नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूं, आप कराने वाले करा रहे हो, आपने मेरा भाग्य बनाने के लिए मुझे निमित्त बना दिया, मैं क्या था। सचमुच अगर कोई आत्मा एकदम नम्र चित होकर के, निर्माण चित होकर के जो कुछ करे और बाबा को अर्पित कर दे बस। कभी कभी मैं कहता हूं श्रेष्ठ कर्म जो हमारे भाग्य की रेखा खींचता है, जितने जन्मों की भाग्य की रेखा हमें बनानी है, हमारे हाथ में कलम है। अभी भाग्य की रेखा दिखाने की जरूरत नहीं है किसी को भी, क्योंकि हमको तो बाबा ने कलम दी है और हमारा बाबा भाग्य विधाता है। भाग्य विधाता बाबा ने अपने बच्चों को तकदीर की तस्वीर अच्छे से अच्छी बनाने की कलम दी है। है सबके हाथ में? जिनके हाथ में है थोड़ा हाथ उठाओ। है पक्का? वो कलम है श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म जिस कर्म में कर्तापन का भान नहीं है, मैं कर रहा हूं, जहां मैं आया वहां अभिमान आ गया, इस मैं और मेरे को हमें मारना है। कभी भी ना आए मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मैं नहीं करता तो कौन करता, मेरी जवाबदारी है। अगर सब कुछ बाबा को अर्पित कर देंगे बहुत हल्के रहेंगे। बिना हल्के बने हुए योग नहीं लगता। इसलिए बाबा का एक शब्द है, बच्चे जहां पर भी मेरा शब्द है वहां तेरा शब्द कर दो, मे को ते में बदल दो। बाबा ये तेरा काम है, तुम निमित्त बनाने वाला तो है, करण करावनहार तो है। अगर सफलता मिल गई आपने कर दिया, अगर कुछ इधर उधर हो गया तो आप जानो, मैं अपने ऊपर बोझ क्यों लूं। संगम युग पर जो आत्मा जितनी निमित्त होकर के, आपने शायद दादी प्रकाश मणि को देखा है, दादी जानकी को देखा है, इतनी हल्की, इतनी जवाबदारियां होते हुए भी, हमारी दादी प्रकाश मणि जैसे जब कोई पूछता था, दादी इतनी बड़ी जवाबदारी, इतना बड़ा यज्ञ, इतना विस्तार, इतनी सारी कुमारियां, इतने सबके बीच में, नीचे ऊपर तो बातें होती ही हैं, फिर आपको नींद आती है? अखबार वाले एक बार पूछ रहे थे दादी से, और दादी कहती है भाई क्या पूछते हो, मैं हेड नहीं हूं, हेड बनना माना हेडक हो जाना। दादी के शब्द हैं, हेड बनना माना हेडक, हम हेड कहां हैं, हेड तो बाबा है, बाबा के यज्ञ है, बाबा के बच्चे हैं, वो करा रहा है, हम लोगों को तो निमित्त बना दिया है, हमको कौन सी चिंता है, वो जाने, बैठा है वो, बाबा बैठा है, मैं क्यों चिंता करूं, मैं तो बिस्तर पर जाती हूं, तकिया पर से रखती हूं और एक मिनट में बाबा मुझे बुला लेता, नींद आ जाती है। क्या स्थिति होगी हल्केपन की, कोई बोझ नहीं रखा, इतने सब कार्य करते हुए क्या नहीं किया। एक बार की बात सुनाता हूं, आप सब बाबा के बच्चे बैठे हैं, मैं जब शुरू शुरू में शांतिवन 2003-04 में डेवलप हो गया, बन गया, और दादी जी की तबीयत थोड़ी थोड़ी बिगड़ने लगी, 5-6 में तो काफी बीमार रहने लगी, और ऊपर आती थी तो यहाँ के वातावरण में ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है तो इसलिए ऊपर नहीं आती थी। एक दो बार आई तो उनको परेशानी महसूस होने लगी, तो काफी समय से ज्ञान सरोवर पांडव भवन में नहीं आई थी, और हम लोग रोज आते जाते थे, अप डाउन करते थे। तो एक दिन मैं गया, दादी ऐसे बैठी थी, तो हम हमेशा जब जाते थे तो पहले मिलते थे जाके, तो ऐसे पूछने लगी सब ठीक चल रहा है, मैं तो बहुत दिन से ऊपर नहीं गई हूं, सब ठीक है, पांडव भवन ठीक है, ज्ञान सरोवर ठीक है, तो मैं तो और क्या बोलूं, मेरा दादी बहुत अच्छा है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। ऐसे जब मैं उत्तर देता रहा तो ऐसे देखती है, अच्छा सब ठीक है, कैसे ठीक है? तो मैंने कहा आपके शुद्ध पवित्र संकल्पों की वाइब्रेशन से सब ठीक है। जब ऐसे कहा तो मुझे ऐसे आंख दिखाते, क्या बोला दादी आप बैठे हैं ना आपके संकल्पों से सब ठीक चल रहा है, सब अच्छा है। बोलती अरे मुट्ठा भूल गया तुम, मेरे संकल्पों से थोड़ी चल रहा है, बाबा के संकल्पों से चल रहा है, बाबा बैठा है ना इसलिए सब ठीक चल रहा है। मतलब इतना निमित्त भाव, इतनी निर्माण चित स्थिति कि मैं कुछ कर रही हूं, मैं कुछ नहीं कर रही हूं, ये बाबा के बच्चे, बाबा का यज्ञ, बाबा के स्थान, वो बैठा है, सब ठीक चल रहा है, ये कहो मैं कर रही हूं ऐसा नहीं। तो ये है हल्केपन की निशानी। ऐसे हल्के अगर रहेंगे तो योगी जीवन बन जाएगी। अगर किसी भी प्रकार का बोझ लेकर के चलेंगे, क्या करूं, मेरी जवाबदारी है, मेरी सेवा है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मेरी खेती है, मेरी नौकरी है, मेरा बिजनेस है, मैं क्या करूं, मैं तो बहुत बिजी रहता हूं। बाबा कहता बिजी रहो, लेकिन बिजी रहते इजी रहो, बहुत सरल नेचर बनाओ। जहां सरलता होती वहां काम नहीं होता। अगर बोझ लेकर के चलूंगा तो योगी जीवन का अनुभव नहीं होगा। इसलिए सभी जो भी है, चाहे प्रवृत्ति है अलौकिक है या लौकिक है, प्रवृत्ति तो हरेक की है, इस प्रवृत्ति को संभालो, लेकिन बहुत हल्के होकर। करण करावन हार करा रहा है, जो करा ले बाबा शुक्रिया आपका, समर्पित करो तो श्रेष्ठ कर्म हो जाएगा और श्रेष्ठ कर्म से अपने आप भाग्य की रेखा लंबी हो जाएगी, जितना चाहे उतना बना सकते हो। तीसरी बात जो बहुत ध्यान देने की है वो है दुआएं, ब्लेसिंग्स, जिसको हम कहते हैं आशीर्वाद। सबसे पहले तुम्हारे बाबा की हमारे ऊपर आशीर्वाद होनी चाहिए। बाबा कहते मांगो नहीं, मैं देता नहीं हूं, लेकिन अगर हम सपूत हैं, आज्ञाकारी हैं, श्रीमत में हाजी करते हैं, कभी मनमत परमत नहीं चलाते, तो गुप्त रीति से बाबा की बहुत दुआएं आशीर्वाद मिलती है। ब्राह्मण जीवन में भगवान की आशीर्वाद किसी बच्चे को मिल रही हो, उसका योग लगेगा या नहीं लगेगा? अपने आप लगा हुआ ही है, टूटता ही नहीं है। सभी लक्ष्य रखना, और वो हम सब ले सकते हैं, सबके सबका अधिकार है, हम बच्चे हैं उसके, और बाबा हमारा साथी है संगम पर। हम सब बाबा की गुप्त आशीर्वाद लें, दुआएं लें। जो श्रीमत मिली है उस श्रीमत में कभी भी मन मत तैर ना करें। सबसे ज्यादा दुआएं किसने ली? मम्मा ने ली। मैं मम्मा की बात सुनाता हूं आपको, मातेश्वरी जगदम्बा ने, और उसका एक ही कारण था, बाबा के मुख से जो कुछ निकला कभी भी उन्होंने क्यों क्या नहीं किया, यस हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मम्मा ने बाबा की एक एक बात, बाबा ने कह दिया मान लो रात के समय बच्ची दिन है, हाँ जी, ये नहीं कहा बाबा कैसे बोल रहे हो दिन है, ये तो रात है। अब कहेंगे ये तो अंधश्रद्धा हो गई, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं थी, वो समझती थी भगवान के महावाक्य में बहुत कुछ राज भरे होते हैं। ऐसे थोड़ी बाबा बोल रहा है रात है। एक बार बाबा ने कहा बच्ची देखना ये दीवार जो है ना थोड़ी देर में गिर जाएगी। सब बच्चे देखने लगे, गिर जाएगी तो डर रहे थे, गिर जाएगी कि नहीं गिरी, इसमें ही संशय हो जाता है कि भगवान ने कहा विनाश हो जाएगा, हुआ नहीं। अरे कुछ तो उसमें राज था जो कहा था, अगर आज वो विनाश नहीं कहता तो शायद हम लोग यहां नहीं होते। जो आज हम आपके सामने बैठे हैं ना, वो विनाश की डेट फिक्स करने के बाद ही हमको समर्पित होने का संकल्प आया। भाई हमारा परिचय दे रहा था, बोला 76 में समर्पित हुए, 76 में तो विनाश होने वाला था, मालूम है आपको? शायद मालूम हो पुरानों को, है? मालूम है आप लोगों को, डिक्लेयर किया था, साकार बाबा ने कहा था। और कब कहा था मालूम है? 66 में कहा था। 66 में बाबा की एक मुरली चली। क्यों चली? उसके पीछे बहुत आज थे। बाबा गए थे दिल्ली, दिल्ली चांदनी चौक, और बाबा सवेरे सवेरे सैर कर रहे थे। सैर करते करते एक स्थान पर खड़े हो गए और बाबा को लगा ये स्थान बड़ा अच्छा है, यहां से सब जा रहे हैं आ रहे हैं, यहां पर एक बहुत सुंदर सेंटर बनना चाहिए। अब वो बाबा का मुख से निकला शब्द कि बच्चे अगर ये स्थान मिल जाएगा बाबा को तो 10 साल में नई दुनिया बना दो। 66 में बाबा वहां खड़े होके बोल रहे हैं 10 साल में नई दुनिया बन जाएगी, पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। अब बाबा ने उस जमीन पर बोला और बच्चों ने उसको हाईलाइट कर दिया, हर चित्र के लिए लिख दिया 10 साल में कलयुग विनाश हो जाएगा, सत्ययुग आ जाएगा। बच्चे जैसे समझे, बाबा ने जिस भाव से कहा। और 10 साल क्या कितने साल लग गए कि वहां पर गवर्नमेंट ने, उस समय इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, उसने रिंग रोड दिल्ली की बनाने का प्लान बनाया और जो बाबा ने जिस जमीन पर नजर डाली थी उसी जमीन से वो रिंग रोड जा रहे थे। अब रिंग रोड बननी है दिल्ली की और गवर्नमेंट का प्लान है और बाबा कहते ये जमीन अगर बाबा को मिल जाए तो स्वर्ग बना दूंगा। अब वो जमीन पर बाबा ने कह दिया, बच्चे लग गए उसके पीछे और ऐसे लगे कि ये जमीन मुझे लेनी ही है, गवर्नमेंट कुछ भी कहे। अब हो गया कोर्ट केस, स्टे लेना पड़ा कि हमको यही जमीन चाहिए। बहुत दिन तक केस चलता रहा, बात हो गई, न उनकी रोड बनी ना हमारे को जमीन मिली। अच्छा, फिर एक वकील निकले, बाबा के घर में आए, सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, लालचंद वत्स, नाम सुना हो शायद, सुप्रीम कोर्ट के थे। वो बाबा के घर में घूमने आए थे एक भाई एक जज के साथ, जज बाबा का बच्चा था गुप्ता जी, वो लेकर के आए उसको यहाँ घुमाने के लिए। और वो इतना प्रभावित हुआ, इतना खुश हुआ, ज्ञान योग में पहले नहीं था कुछ भी उसको पता, लेकिन जब जाने लगा तो दीदी बहुत रमणीक थी और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न उनसे करती थी। तो दीदी ने बोला कैसा लगा आपको, पांडव भवन की बात है ये, तो पांडव भवन में दीदी मनमोहिनी ने उनसे पूछा आपको कैसे लगा। बोला ऐसा लगा जो मैं सारी दुनिया ही भूल गया, इतनी खातरी हुई जो ससुराल में भी ऐसे नहीं होती। वो तो वकील थे, बहुत तार्किक थे और बहुत बोलने वाले थे। तो दीदी के सामने जब बहुत महिमा करने लगे तो दीदी ने कहा अच्छा इतनी सब प्राप्ति हुई, इतना अच्छा लगा, तुम दीदी को कुछ देगा कि नहीं देगा? तो सोचने लगा क्या दीदी मांगेगी, तो सोचा कुछ पैसा मांगेंगी, कोई स्थान मांगेंगी, कोई चीज कहेंगी। तो दीदी ने जो आप मांगोगे, दीदी को बोला उसने, मैं दूंगा। अब दीदी ने उसी शब्द को पकड़ लिया, पक्का देगा? हाँ दीदी आप जो कहेंगे देंगे। अब ये लोगों की बुद्धि में क्या होगा, यही मांगेंगी चीजें जो होती हैं दुनिया की। दीदी ने कहा दो चीजें चाहिए। बोला हाँ दीदी बोलो। बोला एक आना चाहिए और 5 खोटे पैसे चाहिए। अब वो मुझे गया कि एक आना, दीदी आना भी नहीं चलता है, पहले चलता था 16 आने का 1 रुपया होता था, अभी तो आना बंद हो गया, आप क्या करेंगे आना? बोला तुम हाँ कर देगा? बोला हाँ दीदी कहीं से भी ला करके दूंगा। फिर बोला 5 खोटे पैसे। बोला 5 खोटे पैसे, खोटे क्या करेंगे, अच्छे पैसे दूंगा ना जितना। बोली नहीं हमको तो यही 2 चीजें चाहिए। बेचारा बंद गया। कहती एक आना माना एक बार सेंटर पर रोज आना और 5 खोटे पैसे तेरे पास हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार ये दे दे। बेचारा इसी 2 शब्द में ऐसा बंद गया। हाँ ना तो कर नहीं सकता था। यहां से गया वो दिल्ली, रेगुलर स्टूडेंट बन गया, रोज जाना कुछ भी हो जाए, 5 मिनट भी जाना तो अब दीदी से वायदा कर लिया। अब जानना है तो सुनना है कुछ, और 5 खोटे पैसे, काम क्रोध लोभ का त्याग किसने कर दिया तो उसकी जीवन ही बन गई, और क्या चाहिए। और ऐसी जीवन उसकी बनी जो वहां से छुट्टी लेके वो यहां समर्पित हो गया करके। मधुबन में समर्पित हो गया। और समर्पित होने के बाद कहा, दीदी कोई काम हो तो बताओ अभी। तो दीदी ने यही जमीन की बात किया कि तुम इस जमीन को जीत करके दिखाओ। और सचमुच उसने उस जमीन को जीत लिया। उसके बाद रजौरी गार्डन का सेंटर बना। बहुत दिन लग गए उसमें बनने में, बाबा व्यक्त हो गए, बहुत साल बीत गए, उसके बाद वो जमीन आई, बना। अब उस समय बाबा ने 76 बोल दिया था और उसको भाइयों ने, भाई बहनों ने, लिखने वालों ने अंडरलाइन कर दिया। अब मैं जब आया मम्मा के समय से ही, जब मैं 4 साल का था तब से तो सेंटर चलता था घर में, लेकिन जब मैं 15 साल का हुआ तो मधुबन ही आया पहली बार 71 में। और आया तो इतना अच्छा लग गया मुझे, जो मैंने कहा मुझे यहीं रहना है। तो दीदी और दादी की नज़र तो थी कि यहाँ के लायक है, लेकिन उन्होंने जब प्रश्न किए तो मेरे जो उत्तर दिए उसके आधार से कहा, नहीं तुमको तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं इकलौता बेटा परिवार में, 3 के बीच में अकेला, और दूसरा फिर आयु छोटी, 15 साल का था, 9th में मैं पढ़ता था, कैसे छुट्टी देंगी। तो हमने कहा दीदी, अभी दादी को मैंने बोला, दादी भी तो विनाश होने वाला है ना, पढ़ के मैं क्या करूंगा। कहे नहीं अभी छोटे हो, 5-6 साल, 4-5 साल और पढ़ लो। मैंने 5-6 साल, 71 में आया हूँ, 76 में विनाश हो जाएगा और मैं 5-6 साल पढ़ता रहूंगा, मैं सेवा नहीं करूं। बस वो संकल्प लिया, यहां से गया और ड्रामा अनुसार 71 में ही वो बांग्लादेश वाली बहुत भयानक लड़ाई लगी। वो लड़ाई जब लगी तो मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था, शाम के समय 6 बजता था, पूरा ब्लैकआउट, सायरन बजता था, सब लोग घरों में छिप जाओ, लाइटें बंद। अब मैंने सोचा बाबा तो कहता था 76, ये तो 71 में ही शुरू हो गया। और मैंने बस पेपर पूरा किया हाई स्कूल का और 72 में आ गया मधुबन। दादी के, तुम आ गया कैसे आया, अभी तो छोटा है तुम। मैंने कहा दादी विनाश शुरू हो गया। और पिताजी ने पत्र लिख के दिया और मैं आ गया मधुबन में, समर्पित हो गया। तो बाबा की हर बात में कुछ न कुछ राज है। इसलिए क्यों क्वेश्चन उठा रहे हो, ऐसा क्यों कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये सत्य नहीं। बाबा की बुद्धि, अगर हम सत्य सच स्वरूप को, भगवान को पहचान गए हैं तो कभी कोई प्रश्न नहीं करो। जो कह रहा सत्य वचन है, कुछ न कुछ उसमें रहस्य भरे हुए हैं। तो मम्मा ने बाबा की एक एक बात को ऐसे ही हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके नंबर 1 ले लिया। बाबा कहता था मेरे से पहले संपूर्ण बन गई, इसलिए शायद श्री लक्ष्मी का नाम पहले आता, श्री नारायण का नाम पीछे आता है, श्री राधे, श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। तो मम्मा ने ऐसा पुरुषार्थ किया, दुआएं ली बाबा की, परिवार की, इतने लोगों की, परिवार के बेहद सदस्य की, तो नंबर 1 बन गए। हम सब सहजयोगी जीवन बनाना चाहते हैं तो हमें सब की दुआएं जरूर लेनी है। कुछ भी हो, सहन करो, समाओ, बाबा कहता मरो मिटो, लेकिन दुआएं लो। कोई भी भूल चूक से मुझे बद्दुआ ना दे। संतुष्ट रहो, संतुष्ट करो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न करो, दिल से सेवाएं करो, दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा। बाबा की, परिवार की, बड़ों की दुआएं मिलती रहे, योगी जीवन अपने आप बन जाएगा। तो योगी जीवन के लिए 4 बातें तो मूलभूत हैं ही, लेकिन ये 3 बातें सभी अंडरलाइन करना। बहुत सहज जीवन है, योगी जीवन है, सदा आंतरिक खुशी में रहो, डबल लाइट स्थिति में रहो, और सारे परिवार की और बड़ों की, बाबा की दुआएं लेते चलो। ठीक है, ओके, ओम शांति। चलो 5 मिनट के लिए उड़ जाओ देह और दुनिया से दूर बाबा के पास।